ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को दी मंजूरी। जांजगीर में आयोजित जनादेश परब में आज शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले के मीनागट्टा इलाके में माओवादियों की हथियार बनाने की फैक्ट्री का पता लगाकर उसे नष्ट किया। और मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान घने कोहरे की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत यदि किसी को समय पर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। ये अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगा। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण योजना गरीबों, श्रमिकों और मेहनतकश मजदूर वर्ग के जीवन में भरोसा, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की सशक्त व्यवस्था है। ये योजना अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक समय पर काम, पूरा पारिश्रमिक और पारदर्शी व्यवस्था पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। वहीं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नए अधिनियम से गांवों का समुचित विकास होगा।
ये एक कॉम्प्रिहेंसिव विधेयक आया है और इस विधेयक के माध्यम से गांव का समुचित विकास होगा और समृद्ध होंगे गांव और जो भारत है विकसित भारत के साथ साथ विकसित ग्राम भी बनेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज जांजगीर में जनादेश परब का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 2 सालों के दौरान छत्तीसगढ़ ने विकास का नया आयाम स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार ने इन 2 सालों में युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। साथ ही आदिवासियों के हित में भी अनेक बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने का काम किया है। कई बड़े नक्सली नेता मारे गए और हाल के वर्षों में करीब 2500 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।
जब हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी की बनी 2 साल के अंदर, और आपको मालूम है अमित शाह जी ने कहा हुआ है कि आने वाले समय में हम नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और उसको समाप्त करेंगे, इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद चुनाव के दौरान की गई हर गारंटी पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि इन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कल रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती के उम्मीदवारों से रूबरू हुए और भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनी। इस अवसर पर श्री शर्मा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। सभी अभ्यर्थियों के परिणाम पोर्टल पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। युवाओं का चयन प्रावीण्य सूची के अनुसार ही किया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके वेटिंग लिस्ट हम इसका और बढ़ा सकते हैं, सारे ही अभ्यर्थियों के नंबर फिर से जारी कर दिया जाए और इस बार से नॉर्म्स बना दिए जाए कि और क्या क्या संशोधनात्मक परिवर्धनात्मक कार्य हम अपने इन नियुक्तियों के लिए कर ले, ये हम जरूर करेंगे।
गृह मंत्री ने बताया कि तथ्यों के आधार पर जहां गड़बड़ी मिली वहां तत्काल कार्रवाई की गई है। सुकमा जिले के मीनागट्टा इलाके के पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को माओवादियों द्वारा बड़ी मात्रा में डंप की गई विस्फोटक सामग्री मिली है। इसमें 8 राइफल, हथियार बनाने के उपकरण और अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल है। सुरक्षा बलों ने माओवादियों के हथियार बनाने की इस फैक्ट्री को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के घाघरा गांव स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के बटालियन कैंप में बीती रात एक सीएएफ जवान की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मारा गया जवान जब सोया हुआ था, इसी दौरान एक अन्य जवान ने उस पर गोली चला दी जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक जवान उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ आज आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने रायपुर की विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अब तक इस मामले में मूल अभियोग पत्र सहित कुल 8 अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित 5 दिवसीय निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आज समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर में उल्लेखनीय योगदान देने वाले चिकित्सकों को राज्यपाल ने सम्मानित किया। इस शिविर में प्रतिष्ठित अस्पतालों के 55 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। शिविर में 13,000 से अधिक मरीजों की जांच की गई। राज्यपाल रमन डेका ने आज रायपुर में श्रवण और दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए आयोजित कौशल उन्नयन शिविर का अवलोकन किया। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम द्वारा एक समाज सेवी संस्था के साथ मिलकर किया गया है। ये शिविर कल 23 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए 1,000 से अधिक दिव्यांगजन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव के तहत अंतिम चरण की प्रतियोगिता रायपुर में 23 से 25 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 8 विकासखंडों के लगभग 2500 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता का समापन 25 दिसंबर को होगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि समापन समारोह को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने युवा शोध फेलोशिप कार्यक्रम शक्ति फेलोशिप की शुरुआत की है। इसमें भारत में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर शोध के लिए युवा छात्रों और शोधकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयोग ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने के शोध अध्ययन के लिए 1,00,000 रूपये का शोध अनुदान दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। जाने माने हिंदी साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत गंभीर बताई जाती है। वे इस समय रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं। एम्स द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार वर्तमान में गंभीर निमोनिया के लिए उनका उपचार किया जा रहा है और उनकी स्थिति अभी अत्यंत गंभीर बनी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई 4 नई श्रम संहिताओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज रायपुर में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में श्रम विभाग के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त अंकुर शर्मा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आयुक्त गौरव डोगरा और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उपनिदेशक धीरेन्द्र पटनायक ने पत्रकारों को इन 4 नए श्रम कानूनों के माध्यम से होने वाले सुधारों के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा बीते 8 से 21 दिसंबर तक विशेष गतिविधियों और प्रतियोगिताओं की श्रृंखला का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में 20 दिसंबर को कवर्धा जिले के सरोधा दादर स्थित बैगा एथनिक रिसोर्ट में छत्तीसगढ़ी जनजातीय तथा पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस आयोजन में चिल्फी ग्राम पंचायत के स्व सहायता समूहों ने हिस्सा लिया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग के विभिन्न जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान घने कोहरे की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानी गायत्री वाणी ने बताया कि मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर शीतलहर चल सकती है।
आज से लेकर अगले 24 घंटों तक उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है घना कोहरा के लिए, और बिलासपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर येलो अलर्ट जारी किया है कोहरा के लिए। 24 घंटे के पश्चात सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग में कोहरा का इम्प्रूवमेंट होने की चांसेस है। मध्य छत्तीसगढ़ में आज और कल मतलब 2 दिन तक आइसोलेटेड पॉकेट्स में मतलब 1-2 स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है।
और अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम ने कांस्य पदक जीता। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रायपुर में अंतर क्षेत्रीय सांस्कृतिक महोत्सव और हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ आर के त्यागी ने किया। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े कल रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती के लिए विभाग की नई वेबसाइट का शुभारंभ करेंगी। और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज चिरमिरी में आधुनिक शासकीय पॉलिटेक्निक भवन का भूमि पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को दी मंजूरी। जांजगीर में आयोजित जनादेश परब में आज शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले के मीनागट्टा इलाके में माओवादियों की हथियार बनाने की फैक्ट्री का पता लगाकर उसे नष्ट किया और मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान घने कोहरे की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।